माधव के जाने को आधा घंटा होने वाला था, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। वहां अकेली खड़ी होना राधिका को अजीब लग रहा था। हर आते जाते मुसाफिर उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। राधिका ने माधव को फोन करने के बारे में सोचा, तब याद आया कि उसका नंबर तो उसके पास है ही नहीं। बुझे मन से वो मायूस सी उस दिशा में टकटकी लगाए देखने लगी जहां माधव गया था। साथ ही अजीब अजीब मुंह भी बना रही थी और मन ही मन खुद पर खींच भी रही थी। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? अचानक पीछे से आई माधव की आवाज़ सुनकर राधिका बुरी तरह चौंक गई और घबराहट में अपनी हथेली अपने दिल पर रख ली। वो तो उस दिशा में टकटकी लगाए देख रही थी जहां माधव गया था, इसलिए अचानक आई उसकी आवाज़ सुनकर इतनी चौंक गई कि सीने में मौजूद दिल उछलकर लगभग बाहर ही आ गिरा था। राधिका हड़बड़ाते हुए पलटी। इतने में माधव उसके बगल में आ खड़ा हुआ। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे मैंने ही कोई भूत प्रेत आपके सामने आ गया हो? राधिका के चेहरे के उड़े हुए रंग, फटी आंखों और सीने पर रखी हथेलियों को देखते हुए माधव के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। उसका सवाल सुनकर राधिका झुंझलाते हुए उस पर भड़क उठी। डरा दिया आपने मुझे, ऐसे अचानक कोई बोलता है क्या? हार्ट अटैक आने वाला था अभी मुझे। माधव को तुरंत ही अपनी भूल का एहसास हुआ। सॉरी, मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं था। राधिका अब तक संभल चुकी थी, पर अब भी उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव मौजूद थे और खफा निगाहों से वो उसे घूर रही थी। माधव ने माफी मांगी तो राधिका ने बुरा सा मुंह बना लिया। मुंह क्या बना रही है, सच में मैंने जानबूझकर आपको डराने के इरादे से कुछ भी नहीं किया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप मेरी आवाज़ से भी इस कदर डर जाएंगी। माधव की सफाई सुनकर राधिका खींच उठी। बात आवाज़ की नहीं है, जब किसी का ध्यान कहीं और हो और अचानक अगर कोई आवाज़ दे दे तो आमतौर पर इंसान डर ही जाते हैं। आपका मैं कुछ कह नहीं सकती। अंत में उसने कुछ अलग अंदाज से माधव को देखा और माधव का मुंह हैरानी से खुल गया। कहना क्या चाहती हैं आप, मैं इंसान नहीं? मैंने कहाँ कुछ कहा, ये तो आप खुद कह रहे हैं। मैं क्या जानूं, खुद को तो आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। वैसे भी मेरे लिए तो आप अनजान हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंसान नहीं हैं और खुद ये एडमिट भी कर रहे हैं तो सच ही होगा। राधिका ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बेफिक्री भरे अंदाज में जवाब दिया और शातिर चंचल मुस्कान उसके लबों पर आ ठहरी। बेचारा माधव फटी आंखों से अचंभित सा पल भर उसे देखता ही रह गया। फिर उसने बेबसी से सर हिलाते हुए उखड़े स्वर में कहा, बहुत अच्छा बदला लिया है आपने मुझसे। अब अगर आपकी नाराजगी मिट गई हो तो चले। चलते हैं, पर पहले आप मुझे बताइए कि आप यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं। राधिका ने मुंह बनाते हुए हामी भरी और भौं उचकाए सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। जवाब में माधव ने पीछे के सुनसान रोड की ओर इशारा करते हुए कहा, ये शॉर्टकट है, आपने जल्दी आने कहा था ना, तो बस इसलिए यहाँ से आ गया। ओह, राधिका ने एक नज़र उस रोड को देखा जो बिल्कुल सुनसान था, फिर सर हिला दिया। अपना हेलमेट लगाते हुए माधव ने बाइक संभाली और झिझकते हुए राधिका उसके पीछे बैठ गई, पर उसने माधव को नहीं पकड़ा था और अपने और माधव के बीच एक निश्चित दूरी भी बनाई हुई थी। ध्यान से बैठिएगा, स्टार्ट कर रहा हूँ, माधव ने उसे अलर्ट किया। राधिका ने तुरंत ही बाइक के बैक में लगे हैंडल को पकड़ लिया। बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। माधव बहुत ध्यान से बाइक चला रहा था और उसके पीछे बैठी राधिका सामने हैंडल में लगे मिरर में उसका चेहरा देख रही थी। 10-15 मिनट का ये सफर जैसे पलक झपकते ही खत्म हो गया था। बाइक जैसे ही रुकी, एक झटके के साथ राधिका माधव की पीठ से अटक रही। पल भर को दोनों की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ी। अगले ही पल सॉरी कहते ही हड़बड़ी में राधिका बाइक से नीचे उतर गई। इसके बाद दोनों ही कुछ असहज से नजर आए। एक ऑकवर्ड सी स्थिति बन गई थी और दोनों अजनबियों जैसे मौन साधे खामोश खड़े थे। राधिका कभी अपनी स्कूटी को देखती तो कभी अपनी कलाई में बंधी घड़ी को। माधव कुछ देर तक सब देखते हुए खामोशी से खड़ा रहा, फिर राधिका के पास चला आया। और कितना वक्त लगेगा? राधिका ने घड़ी में टाइम देखते हुए सवाल किया। उन्हें यहाँ आए आधा घंटा होने वाला था और घर जाने में उसे देर हो रही थी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर आपको देर हो रही है तो आप कहें तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। जब आपकी स्कूटी ठीक हो जाएगी तो उसे भी पहुँचा दूंगा, माधव ने एक रास्ता सुझाया था। पर अगले ही पल राधिका ने उसके इस ऑफर को बड़ी ही विनम्रता से ठुकरा दिया। नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है आपको। आपने मेरी स्कूटी यहाँ पहुँचाई, मुझे यहाँ तक लेकर आए, इतनी मदद की मेरी, इतना बहुत है। आज आपने बहुत हेल्प कर दी मेरी, उसके लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। पर मैं बाकी सब खुद देख लूँगी, आप जहाँ जा रहे थे चले जाइए, आपको भी देर हो रही होगी। ये तो मुमकिन नहीं। माधव का ये जवाब सुनकर राधिका चौंक गई और आंखें बड़ी बड़ी करते हुए हैरानगी से सवाल कर बैठी, क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं आपसे नहीं मिला होता या आपको नहीं जानता होता तो बात अलग होती, लेकिन मैं आपको इन परिस्थितियों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, माधव ने संजीदगी से जवाब दिया। राधिका पल भर कोसे तकती ही रह गई। क्यों, क्यों नहीं जा सकते आप मुझे यहाँ छोड़कर? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपकी दोस्त, रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाली हूँ? जानते तो आप अब भी नहीं है मुझे, मुझसे आपका किसी तरह का कोई रिश्ता भी नहीं, अजनबी ही है हम, फिर मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आप? जैसे जैसे राधिका सवाल कर रही थी, माधव के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। राधिका जैसे ही चुप हुई, माधव ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में सवाल किया, अजनबी समझती हैं आप मुझे? अजीब सा गम और उदासी घुली थी उसके स्वर में और चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए थे, साथ ही झलक रही थी एक अनकही सी शिकायत। सब देखकर और महसूस करने के बाद भी राधिका का चेहरा भावहीन बना रहा।